हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे जैसे तारापरी विक्रांत रंधावा की ओर कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे अमन के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो किसी भी कीमत पर तारा को अपने से दूर नहीं देख सकता था, लेकिन आज उसकी मजबूरी थी। अमन अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त उसका चुप रहना ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उसके पिता की जान को भी खतरा था और तारा का प्लान कहीं ना कहीं उसके समझ में आ चुका था। वो बस अब जल्दी से तारा के वहां पहुंचने का इंतजार कर रहा था, साथ ही साथ वो अपने पिता को सुरक्षित करने का भी इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो उस राक्षस का क्या बुरा हाल करने वाला था, वो राक्षस सपने में भी नहीं सोच सकता था। अमन हमले के लिए पूरी तरह तैयार था, बस वो अपने पिता के वहां होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तारा उस लाल रंग के घेरे के पास गई, उसने विक्रांत रंधावा से कहा, मैं अब यहां आ रही हूं, तुम पिताजी को छोड़ दो। जैसे ही तारा ने ये कहा, विक्रांत मुस्कुराने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उस लाल रंग के घेरे को छू गया। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने उस लाल रंग के घेरे को छुआ जिसमें राक्षसी हिडिम्बा और अमन के पिता कैद थे, वो घेरा तुरंत खत्म हो गया और राक्षसी हिडिम्बा के साथ साथ अमन के पिता भी आज़ाद हो गए। जैसे ही अमन के पिता आज़ाद हुए, तारा उन्हें देखकर मुस्कुराई और आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए। तारा को देखकर अमन के पिता पहली नज़र में ही पहचान गए कि ये उनके बेटे की बहू है, क्योंकि तारा के पेट में उनका वंशज पल रहा था। ये बात उन्हें पता चल चुकी थी और उन्होंने तारा के सर पर हाथ फेर दिया। तभी विक्रांत पीछे से बोला, बस बस बंद करो ये फैमिली ड्रामा और जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूँ। ऐसा कहकर विक्रांत ने जल्दी से तारा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और अमन के पता को जाने के लिए कह दिया। साथ ही साथ उसने राक्षसी हिडिम्बा से कहा, तुम अब अपने कैदी को अपने कब्जे में कर सकती हो, अगर करना चाहती हो तो जाओ, जाकर जिन महाराज अमन से मुकाबला करो। विक्रांत रंधावा ने अपनी बातों से राक्षसी हिडिम्बा को उकसा दिया था और जैसे ही अमन के पता आगे बढ़ने लगे, तभी राक्षसी हिडिम्बा ने अपनी जादुई आग से बनी तलवार निकालकर उनके गले पर लगा दी और अमन ने जैसे ही ये देखा, वो गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और गुस्से से हिडिम्बा की ओर देखकर बोला, मेरे पिताजी को छोड़ दे हिडिम्बा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब तक करिश्मा जी ठीक हिडिम्बा के पीछे जाकर खड़ी हो गई थीं और उन्होंने हिडिम्बा के कानों में अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। करिश्मा जी अच्छी तरह जानती थीं कि अगर काली शक्तियों के गुरु ने हिडिम्बा को वहां उनसे लड़ने के लिए भेजा है, तो वो किसी भी कीमत पर उनसे लड़े बिना पीछे नहीं हटेगी। इसलिए हिडिम्बा को शांत करने के लिए उनके कानों में कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करना जरूरी था। करिश्मा जी ने मौका देखते ही उसके कानों में मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था और जैसे ही हिडिम्बा के कानों में मंत्रों का उच्चारण हुआ, ठीक उसी वक्त अचानक से हिडिम्बा के हाथ में जो तलवार थी वो नीचे गिरकर गायब हो गई और धीरे धीरे हिडिम्बा की आंखें बंद होने लगीं। वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। जैसे ही अमन ने हिडिम्बा को बेहोश देखा तो हैरानी से अपनी माँ की ओर देखने लगा। तब करिश्मा जी ने अमन को बताया, मैंने उसे शांत करने का मंत्र पढ़ा था जिसके बाद वो काली शक्तियों के शक्ति गुरु के वश से कुछ देर के लिए निकल चुकी थी और जिसके कारण वो बेहोश हो गई और होश में आते ही वो एक बार फिर हम पर हमला कर सकती है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कहकर करिश्मा जी जल्दी से अमन के पिता की ओर देखने लगीं और जैसे ही उन्होंने अमन के पिता को देखा, करिश्मा जी की आंखें भर आईं, उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। वहीं अमन भी अपने पिता को सामने देखकर भावुक हो उठा और दौड़कर उनसे गले लग गया। कुछ देर एक दूसरे से मिलने के चक्कर में वे लोग भूल चुके थे कि तारा विक्रांत को लेकर पहले ही निकल चुकी थी और जैसे ही करिश्मा जी ने रोते रोते कहा, हम जानते हैं हमारी बहू ने हमें यहाँ तक लाया है, उसने हमारी बहुत मदद की है। जैसे ही वे अपने आसपास तारा को देखने लगे, तारा दूर दूर तक कहीं नहीं थी। तभी अमन का दिल कांप सा गया, वो कहने लगा, कहाँ गया विक्रांत तारा को लेकर मॉम, तारा कहाँ है तारा। ऐसा कहकर अमन जंगल में बुरी तरह से चिल्लाया और अमन की आवाज़ पूरे जंगल में एक भयानक भूकंप की तरह गूंजी, मानो कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। सभी जंगली जानवर इधर उधर भागने लगे। अमन की आवाज़ में एक अजीब तरह का दर्द था जिसे सभी जानवरों ने अच्छी तरह महसूस कर लिया। तभी करिश्मा जी ने अमन का हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए बोली, बेटा परेशान मत हो, हमें इस वक्त दिमाग से काम लेना होगा। उस विक्रांत ने दिमाग से काम लिया है, हमें राक्षसी हिडिम्बा में उलझाकर वो तारा को लेकर गायब हो गया है, इसलिए हमें भी दिमाग से काम लेना होगा। सबसे पहले हमें जंगल से निकलना होगा, क्योंकि कुछ भी हो विक्रांत जंगल में रहने की गलती नहीं करेगा। जरूर तारा को लेकर अपनी किसी खास जगह पर गया होगा। हमें दिमाग से काम लेकर ही तारा को ढूंढना होगा। ऐसा कहकर जल्दी ही वे लोग अपनी अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए वहां से बाहर निकलने लगे। क्योंकि अब अमन के पिता उनके करीब आ चुके थे, तो काली शक्तियों के गुरु का जो काली शक्तियों की वजह से दबदबा था, जिसकी वजह से सफेद जिन अपनी शक्तियां वहां प्रयोग नहीं कर सकते थे, वो चक्र अब खत्म हो चुका था। हिडिम्बा के बेहोश होते ही पूरा का पूरा चक्र खत्म हो चुका था और जल्द ही उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने बंगले की ओर रवाना हो चुके थे। जैसे ही अमन के पिता अपने घर आए और अपने घर को देखा, तो वे काफी ज्यादा भावुक हो उठे। उन्हें इस बात का पता चल चुका था कि उनके एक बेटे और माँ की मौत हो चुकी है। उन्हें सारी बातों का जल्द ही एहसास हो गया था, क्योंकि करिश्मा जी का हाथ छूटते ही वे सारी बातें समझ चुके थे। तब अमन के पिता अमन को शांत करते हुए बोले, बेटा तारा को हर हाल में हमें ढूंढना होगा, क्योंकि उस वक्त वो अकेली नहीं है। तुम्हारा खून हमारा वंशज उसके पेट में पल रहा है, उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, समझे? तुम अपने पिता का साथ पाकर, अमन की आंखें बहुत ज्यादा लाल हो रही थीं, क्योंकि वो अपने अंदर अपने आंसुओं और गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तारा का कहीं से कहीं तक कोई सुराग नहीं था। वहीं विक्रांत रंधावा तारा को कहीं और नहीं बल्कि जंगल में ही मौजूद एक गुफा में ले गया था, जहां उसकी माँ मौजूद थी। क्योंकि वो अभी तारा को परीलोक नहीं ले जा सकता था, जब तक तारा के पेट से जिन्नों के वंशज का अंत नहीं कर देता, तब तक तारा उसके साथ कहीं नहीं जा सकती थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था और ये भी जानता था कि जिन्नों के वंशज को खत्म करने का केवल एक ही रास्ता था, वो था तारा परी के साथ शारीरिक संबंध। तारा के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए विक्रांत ने उस गुफा को चुना था, इसीलिए वो उसे वहां ले गया था। और जैसे ही उसकी माँ ने विक्रांत के साथ तारा को देखा, तो उसकी माँ का दिल नफरत से भर गया, क्योंकि तारा परी बेहोश विक्रांत की गोद में थी। विक्रांत तारा को बेहोश करके ही उस गुफा तक लाया था। वो अच्छी तरह जानता था कि तारा अगर होश में रही तो वो अपनी परी वाली जादुई शक्तियां इस्तेमाल करके उसके साथ युद्ध शुरू कर सकती थी, इसलिए विक्रांत ने तारा को बेहोश कर दिया था। तब तारा को देखकर विक्रांत की माँ विक्रांत पर चिल्लाते हुए बोली, मैं तो कहती हूँ उस लड़की को अच्छा मौका है, इस लड़की को आज अपने हाथों से मार डाल।
जैसे ही विक्रांत ने अपनी माँ के कहे हुए शब्द सुने, तो वो उसे गुस्से से घूरने लगा और कहने लगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तारा के बारे में ऐसी बातें बोलने की? आप अच्छी तरह से जानती हैं तारा का जिस्म मेरी कितनी बड़ी कमजोरी है, और अब आप मेरी मदद कीजिए। मुझे इसके पेट से उस जिन्न के वंश को खत्म करना है और उसके बाद इसे हमेशा हमेशा के लिए परीलोक में ले जाना है, ताकि मैं अपने असली रूप में वापस आ पाऊं। आखिर कब तक मैं इस इंसानी रूप में विक्रांत के जिस्म से काम चलाऊंगा? जैसे ही विक्रांत ने ये कहा, उसकी माँ उसे हैरत से देखने लगी और कहने लगी, मैं तुझे अभी भी कहती हूँ, तुम इस लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी मत खराब करो। तभी विक्रांत ने अपनी माँ का अचानक से गला पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तारा के खिलाफ किसी तरह की कोई बात नहीं सुन सकता हूँ। अगर आपके पास कोई तरीका है तो बताओ, अगर नहीं है तो भी बताओ, क्योंकि जब भी मैं इसे छूने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अजीब तरह की घुटन हो रही है। आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं इसे छूना चाहता हूँ इसी वक्त। जब तक मैं इसे नहीं पालूंगा, तब तक इसके पेट में जो जिन्नों का वंशज है वो खत्म नहीं होगा। तब विक्रांत की माँ अपना गला छुड़ाते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं इस लड़की को कुछ नहीं बोलूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन, तू इसके करीब इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसके पेट में जिन्नों का वंशज है, और वही तुझे इसके करीब जाने से रोक रहा है। अगर हमें उसे शांत करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ वशीकरण मंत्रों की कठिन तपस्या करनी होगी, जिससे वो जिन्नों का अंश इसके पेट के अंदर ही कमजोर हो जाए और वो तुझे रोक ना पाए। जैसे ही विक्रांत की माँ ने ये कहा, विक्रांत जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, फिर देरी किस बात की, जल्दी से उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करो और तारा के पेट में जिन्नों का जो अंश है उसे इतना कमजोर कर दो कि वो अपनी माँ के पेट में ही एक गहरी नींद में सो जाए। विक्रांत की बात सुनकर उसकी माँ भी हंसने लगी और कहने लगी, तू फिक्र मत कर, मैं अभी अभी सारी प्रक्रिया आरंभ कर देती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने जल्दी ही एक गोल घेरा बना लिया। वहां पर 2-3 हड्डियां, खोपड़ी वगैरह रखने के बाद जल्दी ही उन्होंने कुछ विशेष वशीकरण मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी प्यारी बीवी तारा को वो दुष्ट विक्रांत, जिसके अंदर राक्षस का अंश है, कहाँ ले जा सकता है। वो किसी भी कीमत पर तारा को ढूंढना चाहता था। वहीं करिश्मा जी और उनके पति भी अब काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी बहू को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, क्योंकि एक तो तारा परी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अमन के पिताजी यानी कि अमरेंद्र जी की जान बचाई थी, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें तारा को लेकर और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी। वे नहीं चाहते थे कि उनके घर में कदम रखते ही उनकी प्यारी बहू तारा इस तरह से उनके बेटे अमन से दूर हो जाए। ऊपर से तारा की कोख में जिन्नों का वंशज पल रहा था, जिसके आने का बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, जिन्नों के वंशज के आने के बाद कितनी ही काली शक्तियां खत्म होने वाली थीं, इस बात का अंदाज़ा करिश्मा जी, अमरेंद्र जी, साथ साथ अमन को भी अच्छी तरह से था। तभी करिश्मा जी ने अमन से कहा, बेटा, चाहे कुछ भी करना पड़े, तारा का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं करिश्मा जी को इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बहू तारा एक परी थी, तो वो अपनी शक्तियों के द्वारा उस राक्षस विक्रांत से अपनी रक्षा कर सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी यकीन था कि वो राक्षस कितना ज्यादा शक्तिशाली था, तो इसीलिए अमन का उस वक्त तारा के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसीलिए देरी न करते हुए उन्होंने डिसाइड किया था कि वे अलग अलग दिशा में जाकर तारा को ढूंढ लेंगे, और जिसे सबसे पहले तारा मिल जाएगी वो अपनी शक्तियों के द्वारा उसे बताएगा। तो कहीं ना कहीं अमन भी उनकी बात से सहमत हो गया था। वहीं विक्रांत रंधावा की माँ ने जोरों शोरों से अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि जब तक वो जिन्नों के वंशज को तारा के पेट में ही कमजोर नहीं कर देती, तब तक वो वंशज उनके बेटे को तारा के करीब नहीं जाने देगा, और जब तक तारा के करीब उनका बेटा नहीं जाएगा, तब तक उसे जिन्नों के वंश का अंत नहीं हो सकता, और परीलोक में मूर्छित पड़ा हुआ राक्षस अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आ सकता। तो इसीलिए जल्द से जल्द उन्होंने कठिन तप करना शुरू कर दिया था।